अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदीतमस्तु मा विद्विषावहै। वसुदेवसुतं देवं कंसचाळुरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। रूप चतुर्भुज धर के पधारे हे नाथ नारायण वासुदेव। रूप चतुर्भुज धर के पधारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सब जीव तुम में तुम हो सभी में हे नाथ नारायण वासुदेव। सब जीव तुम में तुम हो सभी में हे नाथ नारायण वासुदेव। व श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। व श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा मारे हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा मारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की जगज्जननी अम्बे माता की सद्गुरुदेव भगवान की। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्तवृंद परम हर्ष उल्लास आनंद के ये क्षण परम पावन दिव्य श्री प्रेम प्रिय आश्रम की ये भूमि अमृत बेला परम पावन प्रातःकाल का शुभ शांत वातावरण और इस सुंदर वातावरण में बैठकर हम लोग नित्य प्रति सत्संग सुधा वर्षा का आनंद ले रहे हैं। महापुरुषों की भगवान की हमारे ऊपर अति अनुकंपा हमारे परम पावन पुण्यमयी ये क्षण जीवन के जिसमें हमको सत्य के संग की प्राप्ति हो रही है। हमारा विषय वर्तमान में श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध बाल लीला के माध्यम से अध्यात्म चिंतन भगवान की लीलाओं के माध्यम से किस प्रकार से अपने जीवन में हम अपने अध्यात्म को समझने की चेष्टा करें। साधारण तरीके से भगवान ने बाल चरित्र में बाल भक्ति जिसको कहते हैं या अध्यात्म का प्रारंभ काल, क्योंकि जब प्रारंभ काल या पृष्ठभूमि जिसको कहा जाता है बैकग्राउंड भूमिका यदि हमारे अध्यात्म की सही है तो आगे का रास्ता यथावत अपने आप सही होता जाता है। अगर हमारी भूमिका हमारा प्रथम चरण ही जो है गलत पड़ गया तो वो पूरा रास्ता बिगड़ जाता है और हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए भगवान ने अपनी साधारण सी बाल लीलाओं में बहुत ही सुंदर तरीके से अध्यात्म के परम लक्ष्य की प्राप्ति का एक साधारण से बिना पढ़े लिखे ग्वाल बाल और बिना पढ़ी लिखी गोपिकाओं के साधारण से जीवन में अध्यात्म का परम रस भरा है। तो हम लोगों ने पिछले वर्ष जो है प्रलंबासुर भगवान ने एक प्रलंब नाम के असुर का उद्धार किया, इस कथा पे जो है इस प्रसंग पे हमने समाप्ति की थी कि किस प्रकार से बलदाऊ जी के द्वारा, क्योंकि भगवान के सहायक बनकर जो आते हैं शेष नाग के अवतार यानी धरती को धारण करने वाले धरणीधर जिनको कहा जाता है, भगवान श्री राम के संग लक्ष्मण बनकर आए और भगवान श्री कृष्ण के संग बलदाऊ यानी बलराम बनकर आए। तो प्रलंब नाम के जो असुर का भगवान ने उद्धार किया ये कथा हम लोगों ने श्रवण की थी कि प्रलंब नाम का एक असुर जो है भेजा गया और उसका कार्य था वहां पर एक खेल खेला बच्चों ने कि एक दूसरे को अपनी पीठ पे दौड़ना है और जो आगे निकल जाए दो जो है आपस में टोलियां बन गई बच्चों की और वो टोलियां जो है एक के नेता भगवान श्री कृष्ण और दूसरे के नेता बलदाऊ, इस प्रकार से टोलियां बनाकर बाल चपल स्वभाव के अनुसार उन्होंने खेल रचा कि एक दूसरे को पीठ पे बैठा के भागेंगे और जो पहले इस स्थान पर पहुंच जाएगा वो जीता और जो नहीं पहुंचा वो हारा। इस प्रकार का खेल वहां चल रहा था तो प्रलंब नाम का एक असुर आया तो भगवान श्री कृष्ण ने, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित उसको देखते ही पहचान लिया कि ये ग्वाल बालों के मध्य में एक छोटा सा ग्वाला बनकर जो आया है ये वास्तविकता में असुर है और प्रलंब भी समझ गया कि भगवान की पैनी दृष्टि ने मुझे पहचान लिया, इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण की टोली में शामिल हो गया और बलदाऊ को अपने कंधे पे बैठाकर बोले कुछ नहीं तो कम से कम इस बलशाली बलदाऊ का तो आज मैं अंत कर ही दूं। लेकिन भगवान यही चाहते थे कि इतने सारे असुरों का उद्धार मैंने किया है तो बलदाऊ भी क्या मेरी सहायता कर रहे हैं अथवा इनको क्या मेरी लीला समझ में आ रही है, देखना चाहते थे भगवान। और जब बलदाऊ को अपने कंधे पर लेकर वो असुर प्रलंब भागा और जंगल के गहन जंगल में जहां जाना नहीं था वहां वो जाता चला गया, तब बलदाऊ जी को संशय हुआ कि ये तो कुछ और है, खेल नहीं हो रहा, ये तो कुछ और खेल हो रहा। और समझने में देर नहीं लगी और ज्यों ही उस प्रलंब ने पटक कर मारने की चेष्टा, उससे पहले वो करता बलदाऊ स्वयं अपने विशाल रूप में आ गए और उन्होंने इससे पहले प्रलंब अपने हथियार का प्रयोग करता, बलदाऊ ने ही उस प्रलंब का उद्धार कर दिया। वध नहीं है, शब्द है उद्धार। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये जो कथा हम लोगों ने श्रवण की थी, यानी पीठ के ऊपर लादना, एक दूसरे का सहारा बनना, अध्यात्म में अध्यात्म की इस बाल लीला के द्वारा भगवान ने हमको समझाने की चेष्टा की है कि साधक कभी भी पराश्रय भाव को प्राप्त नहीं होता है। प्रलंब, दूसरे के ऊपर अवलंबन ले लेना, पीठ के ऊपर है ना, आप देखते हैं ना, छोटा बच्चा अपने घर के बुजुर्ग को क्या बना देता है, घोड़ा बनाता है कि नहीं, घोड़ा बनकर उसको पीठ पे लाद कर छोटे बच्चे को आप चलाते हैं। तो अध्यात्म में अक्सर हम ये गलती, बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर या अपने सहयोगियों के ऊपर अवलंबन लेना प्रारंभ कर देते हैं, है ना। भगवान इसीलिए, स्वयं भगवान ने प्रलंब का उद्धार नहीं किया, किसके द्वारा कराया, बलदाऊ के द्वारा, क्योंकि कहीं बलराम पूर्णतया मेरे ऊपर आश्रित तो नहीं है कि सारी लीलाएं भगवान को ही करनी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान साधक से, अध्यात्म साधक से कभी यह अपेक्षा नहीं करता है कि साधक पराश्रय भाव को प्राप्त हो जाए, अपना भार दूसरे के ऊपर डालना, क्योंकि पराश्रय भाव में हम अपना भार किसके ऊपर डाल देते, यही तो खेल चल रहा है वहां पर, एक दूसरे को पीठ पर लाद कर क्या करना है, भागना है। और साधारण मनुष्य हम आपसे ज्यादा बढ़िया है, हम आध्यात्मिक सत्संगियों से साधारण मनुष्य बहुत बढ़िया, जिसको हम लोग नास्तिक कहते हैं, जो भगवान को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हम भगवान को मानते ही सबसे पहली गंदगी हमारे अंतःकरण में यह आती है कि अब मेरा सारा भार कौन उठाएंगे, अब मेरे जीवन में कोई दुख आना नहीं चाहिए। क्यों भाई, यही निर्णय कर लेते हो ना आप, क्योंकि हम क्या हैं, आध्यात्मिक हैं, हम भगवान के उपासक हैं, हम भगवान की साधना करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुख आना ही, आपने एक भी भगवान की ऐसी लीला पढ़ी है जिसमें भगवान को दुख का सामना न करना पड़ा हो, एक भी आपने, चाहे राम लीला हो या कृष्ण लीला हो, कोई भी लीला हो, हर जगह आपको स्वयं भगवान को, जिनको आप दुख कहते हैं, हमारी आपकी भाषा में सुख दुख अलग चीज है, वास्तविकता में संसार में ना कोई सुख है और ना कोई दुख है, ये हमारी आपकी कल्पना है, हैं? जब आपकी जो कल्पना होती है उसके अनुसार आप उसको सुख मानते हैं और वही चीज आपके लिए दुख रूप हो जाती है जब आप उसको अस्वीकार कर देते हैं, जब आपके जीवन में उस चीज की कोई अनिवार्यता नहीं रह जाती, उसका कोई कार्य नहीं रह जाता, वही चीज आपके लिए क्या हो जाती है, दुख रूप हो जाती, वही सुख था और वही क्या हो गया, दुख हो गया। इसलिए हम आध्यात्मिक जगत में आके सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, यही भगवान बलदाऊ जी के द्वारा दिखाना चाहते हैं, कहीं बलदाऊ के अंदर ये हृदय में बात तो नहीं घर कर गई है कि ये सारा भार जो है भगवान को ही उतारना धरती का, तो सहायक हमको भी बनना है। भगवान अपने भक्त से, साधक से अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि पराधीनता में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती, और पराधीन भाव आते ही साधक की साधना, जितनी भी उसने साधना की है, वो सब क्या हो जाती है, परमेश्वर को जो करना है वो तो करेंगे ही, गुरु को जो कृपा करनी है वो तो करेंगे ही, भगवान को जो कृपा करनी है वो तो करेंगे ही, लेकिन हमारा भाव कभी नहीं होना चाहिए कि हम अपने दुखों का भार भगवान, गुरु या अपने अन्य प्रेमियों के ऊपर क्या कर दें, डाल दें। ये जो पराश्रय भाव है, ये हमको कभी भी साधना में आगे बढ़ने नहीं देता, ये हमको वहीं का वहीं रोक देता है। लेकिन हम अपने आप को भगवान का भक्त और साधक मानते रहते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हमको ऐसा लगता है कि हम साधना के क्षेत्र में बहुत आगे निकल गए, हम अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत आगे निकल गए, लेकिन ये छोटी सी बाल लीला है, बड़ी साधारण सी बाल लीला है जो हमको समझाना चाहती है कि साधक को सबसे पहले ये बाल भक्ति है। देखिए, और आपको दिखाई देगा हमारा पराश्रय भाव में ही अपने आप को लोग अनुभव करते हैं कि हम बड़े सुखी हैं। सुखी नहीं है, भगवान को ये बिल्कुल भी पसंद है। और भगवान ने तो महाराज इस लीला को अंत तक किया है। जरा विचार करो, हैं? आपने देखा है चित्र भगवान का, अर्जुन का क्या हांक रहे हैं, हैं? भगवान ने कभी पराश्रय भाव स्वीकार किया? पूर्ण लीला में अपने इतनी अवस्था में भी भगवान ने अर्जुन के रथ की डोर को स्वयं अपने हाथों से थामा माना है, उन घोड़े की लगामों को स्वयं थामा, और हम अपनी डोर, हम अपनी लगाम दूसरे के हाथ में सौंप देना चाहते हैं। विचार कीजिए, अध्यात्म ये साधारण सी बाल लीलाएं हैं, बाल भक्ति हमने जो है विचार चिंतन क्या है, ये साधारण सी दिखाई देने वाली भगवान की बाल चपल लीलाएं, केवल एक साधारण से बच्चों के खेल, लेकिन उनके अंदर भरा हुआ अध्यात्म का वो सार, जहां पर हम गलतियां करते हैं लेकिन हम कभी अपने आप को गलत मानते नहीं हैं, ये बड़ी समस्या है। तो इसलिए प्रलंब की हमने कथा पे समाप्ति की थी, और भगवान यही देखना चाहते थे और उसका उत्तर दिया। जैसे लक्ष्मण जी ने, देखो हमारे यहां ये सांसारिक नियम है कि बड़ा भाई जो है छोटे भाई के ऊपर आदेश चलाता है। सांसारिक नियम है कि नहीं है कि बड़ा भाई छोटे भाई को आदेश देता है कि तुमको ये करना चाहिए, मैं बड़ा हूं, ये सांसारिक नियम है, बड़े लोग छोटे को आदेश देते हैं। लेकिन जिस समय शूर्पनखा भगवान श्री राम के सामने आई तो भगवान ने तो मना कर दिया कि मैं एक पत्नी व्रतधारी हूं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, क्यों भाई बताओ जरा, भगवान को क्या ये मालूम नहीं था कि लक्ष्मण जी की भी का भी विवाह हो चुका है? लक्ष्मण जी का भी तो विवाह हो चुका था कि नहीं, कुमारे थे। लेकिन उन्होंने जैसे यहां पर बलदाऊ की परीक्षा करने के लिए भगवान ने प्रलंबासुर को बलदाऊ के कंधे पर लाद दिया, उसी प्रकार से भगवान ने जो है शूर्पनखा को अपनी तरफ से अलग करके लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। भाई मर्यादा पुरुषोत्तम होने के अनुसार तो भगवान को क्या करना चाहिए था, शूर्पनखा को वहां से क्या करते, भगा देते और कहते लक्ष्मण के पास तो बिल्कुल भी मत जाना, यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप यही करते हो कि नहीं करते हो? लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भगवान ये देखना चाहते हैं कहीं लक्ष्मण मेरे ऊपर आश्रित तो नहीं है कि मेरा सब कुछ भगवान ही संभालेंगे। इसलिए भगवान ने पूरी पूरी खुली छूट दी। जानते हैं भगवान की लक्ष्मण का भी विवाह हो चुका है और लक्ष्मण जी भी एक पत्नी व्रतधारी हैं, लेकिन उसके बाद भी भगवान ने किसको, शूर्पनखा को भेज दिया कि जाओ यदि लक्ष्मण तुम्हारे संग विवाह करना चाहे तो उनको चुन सकती, खुली छूट। और देखो लक्ष्मण जी अगर साधारण हमारी आपकी तरह होते तो भगवान से रूठ जाते कि नहीं रूठ जाते, गुस्सा हो जाते कि नहीं गुस्सा हो जाते, बोले अपनी बला टाल के मेरे ऊपर भेज दी, क्यों भाई यही होता कि नहीं होता? लेकिन लक्ष्मण जी ने भगवान को उत्तर दिया कि नहीं दिया, किस रूप में उत्तर दिया ये तो सब जानते हैं महाराज। लक्ष्मण जी ने कहा वाह प्रभु मेरी परीक्षा लो, अगर आप मेरी परीक्षा ले रहे हो तो मेरी आंसर शीट भी देख लो, है ना। भगवान यही तो देखना चाहते थे कि लक्ष्मण का अपना भी कोई विचार है या मेरी तरफ निहारेंगे कि भगवान मैं क्या करूं। हम लोग यही करते हैं कि नहीं अध्यात्म, देखो अपने जीवन की तरफ, हम लोग अपने आप को आध्यात्मिक कहते हैं, हम अपने आप को सत्संगी कहते हैं, लेकिन हमारा पराश्रय भाव है कि हम जरा सी तकलीफ हमारे जीवन में आई और हम चाहते हैं कि भगवान कोई जादू की छड़ी निकालें और हमारे दुख को क्या कर दें। बोलो यही चाहते हो कि नहीं चाहते? लेकिन भगवान ऐसा नहीं चाहते। भगवान कहते हैं यदि तुम वास्तविकता में अध्यात्म की गहराई में उतरना चाहते, भाई छोटे बच्चे को पानी में तैरना तैराक जो है किनारे सिखाता है, लेकिन अगर उस तैराक का मन बीच गहराई में जाकर तैरने का हो उसके लिए तो स्वयं उसको क्या करना पड़ेगा, वहां नहीं वो तैराने जाएगा। अगर आपको तैरना सीखना है तो किनारे, जल के किनारे महाराज आपको सिखाया जा सकता है, लेकिन आप कहो कि बीच सागर की गहराइयों में आपको कोई तैरना सिखाए, वो तो वहां पर तो वो तैराक आपसे स्वयं कह देगा कि जाओ तुम खुद जाकर अपनी शक्ति लगाओ, अगर वहां का आनंद लेना चाहते हो, तो यदि आप अध्यात्म की गहराइयों में जाना चाहते हैं, ये जो आप तत्वमसी अहम ब्रह्मास्मि के बोध की बात करते हैं, यदि इन गहराइयों में आप गोता लगाना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन से पराश्रय भाव हमेशा के लिए क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा, प्रलंबासुर का उद्धार करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक प्रलंब का उद्धार आपके जीवन से नहीं होगा, तब तक आपको परमेश्वर समझ में आने वाले नहीं है। तब वो भगवान से प्रार्थना करता है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, यानी जैसा वो रखे, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसको अपने प्रारब्ध का फल समझकर यथा योग्य सहन करना। ये जब भाव हमारे अंदर आ जाता है, इस भक्त को, इस साधक को परमेश्वर जो है क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। उसके पहले हमको स्वीकार नहीं करते परमेश्वर, क्योंकि जब तक हम भगवान के भरोसे बैठे हैं, जब तक हम किसी दूसरे के भरोसे बैठे हुए हैं कि वो हमारी तकलीफों को क्या करेगा, दूर करेगा, है ना, और वो भी सब हमारी अपनी बनाई हुई है। क्योंकि जितने भी दुख आपके जीवन में हैं, वो सब किसके, हमारे आपके द्वारा, स्वयं के द्वारा निर्मित है या बाहर से आए हैं? क्यों भाई, क्या कहते हैं आप लोग, हैं स्वयं निर्मित है कि नहीं है? भले आप उस चीज को माने अथवा ना माने, लेकिन ये सब हैं आपके द्वारा ही निर्मित। अगर आप अपने जीवन को पढ़ने की चेष्टा करेंगे तो एकदम स्पष्ट दिखाई देगा कि जिनको आप दुख कहते हो, ये वास्तविकता में आपके अपने ही द्वारा बनाए गए, किसी दूसरे ने नहीं दिए। तो प्रलंब का उद्धार कर डालो, पराश्रय भाव को समाप्त कर दो, और जिस दिन पराश्रय भाव समाप्त हो गया, दूसरे का आधार, दूसरे के भरोसे जीने का स्वभाव आपका समाप्त हो गया, समझ जाइए अध्यात्म साधना है ये, वेदांत साधना है। साधारण साधनाएं कहती हैं किसी मंदिर में जाकर जाप करो, किसी जो है हिमालय की कंदरा में जाकर जाप करो, बहुत आसान काम है, लेकिन ये कार्य बड़ा कठिन है महाराज। समाज के बीच में हम पराश्रय भाव से अलग हट जाएं संभव नहीं है। हम दूसरे के ऊपर आधारित रहकर, अपने भार को दूसरे के ऊपर डालकर चाहते हैं कि हम साधक बन जाएं या हमको आत्मबोध हो जाए, आत्मलाभ प्राप्त हो जाए, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। उसके बाद भगवान ने एक बहुत सुंदर लीला की है। भगवान, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पशुओं को भगवान की अवस्था की ओर ध्यान दें, क्योंकि ये बाल लीलाएं हैं, और अंतिम बाल लीला भगवान ने 11 वर्ष की अवस्था में कंस को समाप्त करने के पश्चात बाल लीलाओं की समाप्ति हुई। तो भगवान की अवस्था कंस वध के समय जो है कितनी थी, 11 वर्ष, और इस समय भगवान की अवस्था है लगभग 5 वर्ष। कितनी है, हाँ 5 वर्ष महाराज, तो 5 से 6 वर्ष की बीच की अवस्था भगवान की है, और 6 वर्ष की अवस्था में एक तो भगवान के विषय में बहुत बड़ी हमारे अंदर ये जो है एक गलत धारणा बनी हुई कि भगवान केवल गाय और बछड़े बछिया ही चराते थे। भगवान की पशु सेना में सारे जीव थे। कौन कौन थे जरा सुनो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अजा गावो महिष्यश्च निर्विशन्त्यो वनाद वनम्, ईशिका टवीम निर्विवशु क्रांद्यन्तो दावतर्षितः। दावानल से भगवान ने दो बार बचाया है, और भगवान के जो पशु थे उसमें अजा कहते हैं बकरी को, गावो यानी गौएं, महिष्यश्च यानी भैंस, तो ये सारे जीव थे महाराज। ऐसा नहीं केवल भगवान गाय चराते थे। हम लोग अक्सर देखा होगा लोग प्रचार करते हैं भैंस का दूध मत पियो या केवल गाय का दूध पियो, ऐसा कुछ नहीं है। सब जीव भगवान के ही बनाए हुए हैं। ये अलग बात है कि हर एक जीव के दुग्ध में अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे गऊ का दुग्ध है वो बहुत हल्का होता है, स्फूर्तिदायक होता है, भैंस का दूध जो है वो बड़ा गरिष्ठ होता है, उसमें घी ज्यादा होता है, उसमें जो है अन्यान तत्व जो है जिसको आप सफेदी या पनीर जिसको कहते हैं वो तत्व ज्यादा होता है तो भारी होता है हजम करने में। इसी प्रकार का ऊंट का दूध और ज्यादा गाढ़ा हो, भैंस से भी गाढ़ा होता, भेड़ का दूध और ज्यादा गाढ़ा होता। भेड़ का जो है अगर 100 ग्राम दूध आपको मिल जाए, 100 ग्राम से ज्यादा दूध देती ही नहीं है वो, अगर 100 ग्राम दूध भी भेड़ का मिल जाए तो उससे आप 2.5 किलो दूध तैयार कर सकते हैं गाय का। कितना? 2.5 किलो गाय का दूध, बिल्कुल जितना गाढ़ा होता है, इतना गाढ़ा दूध ऊंट का और भेड़ का दूध इतना गाढ़ा होता है, और अगर सुबह से दोपहर तक रख दिया जाए तो उसमें इतना मीठा होता है कीड़े पड़ जाते हैं इतना जल्दी। तो हर जीव के अंदर कुछ ना कुछ विशेषता है। तो भगवान ने ऐसा ये कहीं नहीं कहा कि इसका दूध मत पियो, यथा योग्य अपने जो है शरीर के अनुसार। यदि आपको बलशाली बनना है तो उसके लिए भैंस का दूध, यदि आपको साधना करनी है, यदि आपको साधारण रूप से रहना है, साधना करनी है तो उसके लिए गाय का दूध है। अगर आप सोचो कि गाय का दूध पी करके मैं पहलवानी करूं तो ये संभव? जैसा आपको बनना है वैसा ही आपको भोजन करना पड़ेगा। तो इसीलिए हर जगह अलग अलग जीव। अब रेगिस्तान में महाराज वहां गाय कहां से आएगी, वहां तो ऊंट है, ऊंट का ही दूध, उसको क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, वहां गाय के चराने के लिए कोई चारागाह थोड़ी बना। तो जहां जैसी व्यवस्था है, इसलिए भगवान ने कोई पाबंदी नहीं लगाई कि मैं गाय चराता हूं तो सारी दुनिया गाय ही चराए। लोग जो है इस प्रकार का पागलपन करने लगते हैं, भगवान कहीं भेद नहीं। तो 84 लाख योनियां बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी महाराज, एक ही बनाते भगवान गाय। तो इतनी सारे जो ये जीव स्वयं श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, अजा गावो महिष्यश्च निर्विशंत्यो बनाद बनम। भगवान इतने सारे जीवों को जो ये गाय भैंस बकरी घोड़ा कुत्ता उसमें सब शामिल थे महाराज, क्योंकि जब गौ पालन करते हैं तो गौओं को नियंत्रित करने के लिए सबसे बढ़िया चीज होती है श्वान यानी कुत्ता, जो महाराज चारों तरफ से गायों को घेर के रखते हैं। तो सब जीव भगवान के संग जाते थे और एक वन से दूसरे वन में एक दूसरे को जो है लेके घूमते रहते थे, चराते रहते थे। यही भगवान का कार्य था महाराज। जरा देखो, तो राजा के पुत्र होने, नंद राजा के पुत्र होने के बाद भी भगवान स्वयं जंगल में जाकर क्या कर रहे हैं, गाय चरा रहे हैं कि नहीं चरा रहे? ये भगवान का स्वयं का देखो पराश्रय भाव, भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नहीं तो भगवान के लिए तो मखमल के गद्दे थे महाराज। वृद्धावस्था में नंद बाबा को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो सुख चाहते वो सुख महाराज उनको जो है न्यौछावर कर दिया जाता, लेकिन ऐसा वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। स्वयं भगवान और बलदाऊ गर्मी के दिनों में महाराज, भयंकर गर्मी के दिनों की ये कहानी है, क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु चल रही है। आपको बताया था कालिया दह की कथा का भी आपको जो है हमने प्रकरण सुनाया था कि भगवान ने जिस समय पानी की शुद्धि, और कल भी हमने इस बात की चर्चा की थी, क्योंकि इस समय जो विश्व में चर्चा है वो ये है कि अगला विश्व युद्ध यदि होगा तो उसका मुख्य विषय होगा जल। जरा सोचो थोड़े दिन बाद क्या होने वाला है, अगले 10-20 सालों में विश्व युद्ध का मुख्य कारण ही जल होगा, और जल के लिए एक दूसरे को लोग मारने मरने को तैयार हो जाएंगे। थोड़े दिन बाद होने वाला है ऐसा, किसको कोई भी रोक नहीं सकता है, हम इस कगार पर पहुंच चुके हैं। तो जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले भगवान ने अपनी लीला के माध्यम से ये लीला की थी महाराज, जिसको आप कालिया दह की साधारण सी लीला समझते हैं, और भगवान की लीलाओं को हम लोग जो है एक नाटक मंडली का जो है तमाशा घोषित कर देते हैं। इनकी गंभीरताओं में, इनके वैज्ञानिक तथ्यों में हम जाने की चेष्टा नहीं करते कि किस प्रकार से भगवान ने जो है उस भयंकर विषाक्त जल में, जो प्रसंग आता उसमें ये आपको सुनाया था हमने कि जो वहां के गाय बछड़े बैल बचिया जो भी लोग उस जल को इस्तेमाल करते थे, विषाक्त जल को, वो महाराज क्या हो जाते थे, मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। और भगवान को ये सहन नहीं हुआ, भगवान ने जो है उस समय कालिया दह में छलांग लगाई, और कालिया दह में छलांग लगाने के बाद उस विषाक्त जल की ये स्थिति थी कि स्वयं भगवान की भी मृत्यु हुई वहां पर। श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग हमने आपको सुनाया था, ऐसा नहीं कि भगवान बच गए, स्वयं भगवान का शव भी उस कालिया दह में महाराज तैरने लगा के, और जब उस तैरते हुए भगवान के सुंदर शरीर को देखा, ग्वाल वालों ने महाराज जाके हाहाकार मचा दिया, जो है वृंदावन में गांव में कि इस प्रकार से जो है हमारा कन्हैया उस कालिया देह में कूदा और इस समय उसका शरीर पानी में तैर रहा है। सारे ब्रजवासी वहां भागे और देखने लगे जाके महाराज यशोदा से तो वो दृश्य भी नहीं देखा गया क्योंकि नीला नीला भगवान का शरीर उस कालिया देह में जो है तैर रहा था सौ की तरह। तो भगवान हमको आपको ये दिखाना चाहते हैं कि बचेगा कोई नहीं, यदि हमने गलती की तो हमको उस गलती को क्या करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, हम स्वयं भोगेंगे। और स्वयं भगवान ने भी उस स्थिति का सामना करके दिखाया, लेकिन फिर उसका तरीका भी बताया उन्होंने। स्वयं भगवान फिर अपने प्राणों का संचार करके खड़े हुए और उन्होंने जाके कालिया नाग को नथा, यानी समस्या का समाधान है लेकिन समस्या का समाधान करना पड़ेगा, समस्या का समाधान अपने आप नहीं होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, पुरुषार्थ। जैसे हमने इस जल को गंदा किया है उसी प्रकार से हम इस जल की पुनः व्यवस्था भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास पुरुषार्थ और विचार शक्ति दोनों होने चाहिए। और भगवान ने दिखाया करके नृत्य करते हुए कालिया नाग के ऊपर उन्होंने क्या प्राप्त की, विजय प्राप्त की महाराज। तो कालिया देह से फिर उनको जो है रमणक द्वीप में भगवान ने भेज दिया कि तुम जो है रमणक द्वीप में जाकर निवास करो, इस जल को छोड़ दो जिससे ये जल पवित्र हो, और इसकी पवित्र जल की जो है पवित्र जल का उपयोग करके हमारे जो ये गोकुल जो वृंदावन निवासी हैं ये जो है अपने जीवन को संचालित कर सके। यानी हर चीज का उपाय है लेकिन उपाय सोचने का हमारे पास तरीका और माध्यम होना चाहिए, वो है नहीं। और हम लोग केवल हर चीज को देखिए प्रदूषित कर चुके हैं। आपके बगल में जो है उछलने कूदने वाला सागर, पूर्णतया ना जाने अनगिनत कितने पानी के जहाज, लाखों में तो अब गिनती नहीं होती, करोड़ों और अरबों लीटर विषाक्त जल जो है यहां पर छोड़ते हैं महाराज, करोड़ों अरबों लीटर की बात करो, कितना तेल उन जहाजों में जलता है और वो जितनी भी गंदगी होती है सब कहां जाती है, सब इसी सागर। तो इतने बड़े बड़े महासागरों को हमने, जिसको हम वैज्ञानिक युग कहते हैं, ये हमारे जो विज्ञान के बड़े बड़े शिप्स आपको तैरते हुए दिखाई देते हैं महाराज, ना जाने कितनी गंदगी हमने समुद्र के अंदर डाल दी है, लेकिन उसको निकालने का हमारे पास कोई रास्ता, जो नीले रंग का समुद्र कहा जाता है महाराज, आप अपने बंबई के तटों में जाकर खड़े हो जाओ आपको काले रंग का समुद्र देखने को मिलेगा, देखिए किनारे पे जाके महाराज, क्योंकि समुद्र गंदगी अपने अंदर रखता नहीं, सब बाहर फेंक देते, तुम्हारी चीज तुम्हीं को, जाके खड़े हो जाओ समुद्र के किनारे काले रंग का, लेकिन इसका हमारे पास कोई समाधान नहीं। अब इसका परिणाम ये होगा कि थोड़े दिन के बाद क्या स्थिति होने वाली है हम कुछ नहीं जानते हैं, क्या होगा, कैसे एक दूसरे के लिए पानी के लिए लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। अभी तो आप बैठ के यहां सत्संग कर रहे हैं लेकिन एक समय ऐसा आने वाला है जब यहां सत्संग वत्संग सब बंद हो जाएगा और पानी के लिए हम एक दूसरे की हत्या कर रहे होंगे, सोचो अकल्पनीय। जैसे आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले अगर आपसे कोई कहता कि थोड़े दिन के बाद तुम लोग जो है 25 रुपए की एक बोतल पानी खरीद के पियोगे, आपको उस समय क्या आती, हंसी आती कि नहीं आती, उस समय पानी आपको कितने रुपए मिलता था, 5 पैसे का, अरे भाई 5 पैसे का एक गिलास ठंडा पानी मिलता था बर्फ का, बोलो मिलता था कि नहीं, कभी कल्पना की थी आपने उस समय कि हमको जो है कभी 25 रुपए की एक लीटर की बोतल खरीदनी पड़ेगी, लेकिन अभी आप बड़े प्रेम से खरीद रहे हैं, लेकिन यही 25 साल बाद अब क्या स्थिति होगी स्वयं आप कल्पना कर सकते हैं। ये बोतल भी महाराज वीवीआईपीज को मिला करेगी, साधारण आदमी की पहुंच से पानी भी बाहर होने वाला है, ये है चेतावनी, वैज्ञानिकों की चेतावनी, हमारी मत मानो कन्हैया की मत मानो क्योंकि ये तो गवारों की चीज है, लेकिन वैज्ञानिकों की तो मानोगे क्यों भाई, मॉडर्न एज बोलते हैं ना, मॉडर्न एज, हम लोग बड़े वैज्ञानिक हैं महाराज, अब तो वैज्ञानिक खुद ही परेशान है कि हम क्या करेंगे, कोई समाधान नहीं है इसका। तो भगवान ने कालिया देह की लीला से हजारों साल पहले महाराज ये चेतावनी दी थी, लेकिन हम लोग खाली इनको साधारण सी नाटक लीलाएं समझते रहे, इनका जो पीछे का रहस्य या इनके पीछे का जो भगवान का उपदेश था उसको हमने कभी समझने की चेष्टा नहीं की। और उसके बाद इसी गर्मी के दिनों में, क्योंकि ये मई और जून का ही महीना था जब भगवान ने ये लीला की, और इसी समय हमारा पानी सबसे ज्यादा गंदी अवस्था में होता है, क्योंकि ज्यो ज्यो पानी सूखता जाता है उसमें गंदगी की तादाद जो है क्या हो जाती, बढ़ती जाती है, विषाक्त हो जाता है। इसीलिए आपने देखा गर्मी के दिनों में इस प्रकार की, जिसको आप हैजा कहते हैं, कालरा बोलते हैं, ये बीमारियां ज्यादा संख्या में क्या होने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं, क्योंकि पानी के अंदर विष की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। तो इसी समय भगवान ने एक लीला की थी जो है दावानल से रक्षा की। तो जिस समय, क्योंकि प्रातः काल से ये लीला भगवान की प्रारंभ हुई थी, और लीला होते होते महाराज रात सायंकाल का समय आ गया, गर्मी के दिन जो है प्रातः काल बिल्कुल बहुत जल्दी हो जाता है, लगभग 5 बजे हैं, और रात्रि भी बड़ी देर से होती है, सूर्यास्त भी लगभग 7-8 बजे, तो लगभग ऐसा समय हो गया था, और सूर्यास्त के समय 8 या 9 बजे, तो इतने थक चुके थे सारे कि वहां गांव जाने की हिम्मत उनकी समाप्त हो चुकी थी। पहले तो भगवान के दुख से दुखी थे, शरीर उसमें थक गया, फिर भगवान की लीला देखते देखते थक गए। तब महाराज भगवान सबने निर्णय क्या किया, क्योंकि जंगल में रहने वाले लोग थे बिना डर भय के, इसलिए उस जंगल के किनारे ही, कालियादेह के किनारे, जंगल के किनारे ही सबने महाराज नींद निद्रा देवी को प्राप्त हो गए। अपना बस तो था नहीं, निद्रा आने लगी सबको, सब वहीं सो गए महाराज। और ऐसा जंगल के किनारे सोने पर हुआ क्या कि वहां पर चारों तरफ से महाराज आग ने उनको घेर लिया, क्योंकि जंगल में गर्मी के दिनों में जंगलों में क्या लग जाती, पत्तों की रगड़ से, पेड़ की रगड़ से, या किसी की गलती से जो है आग लग जाती। कहते हैं तदा सुचिवनोद्भूतो दावाग्नि सर्वतो ब्रजम सुप्तम निशीत आवृत्य प्रदग्धुम चक्रमे। कहते हैं चारों तरफ से उस दावाग्नि ने उस ब्रज को घेर लिया, और सब के सब महाराज चिल्लाने लगे जब आग लगी और उनको गर्मी महसूस हुई, नींद खुली, और जब उन्होंने अपने जो है चारों तरफ अग्नि के प्रकोप को देखा कि अब तो इससे बचने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है, उस समय महाराज सारे ब्रजवासियों ने चिल्लाना प्रारंभ किया, कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे राम वित विक्रमा, हे बलराम, हे कृष्ण, तुम ही हमें बलशाली हो, और तुम ही हमको इस भयंकर वहिनिस्तावाकान ग्रस्ते हिना, इससे पहले ये अग्नि हमको खा जाए तुम हमारी जो है रक्षा करो। इस प्रकार से जब लोग चिल्लाए, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जगदीश्वर भगवान इस संसार की रचना करने वाले हैं, और उन्होंने ही संपूर्ण धरती का भार अपने ऊपर लिया है, इसलिए देखते ही देखते तमग्निम पिबत्ति ब्रह्मनंतो अनंत शक्ति धृक्, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति अनंत है, इसलिए उस अनंत शक्ति परमेश्वर ने देखते ही देखते सबके समक्ष उस आग को अपने मुख में पी लिया। सब देख रहे हैं, और भगवान के मुख में संपूर्ण अग्नि क्या हो गई, समाहित हो गई। दावाग्नि से एक बार भगवान ने इस प्रकार से ब्रजवासियों की रक्षा की। उसके बाद दूसरी बार जब ये जो है संपूर्ण अपने पशुओं के संग भगवान जो है वृंदावन क्षेत्र में महाराज छोटे छोटे ग्वाल वालों के संग विचरण कर रहे थे, वहां भी पुनः एक बार भगवान ने जो है दावाग्नि से रक्षा की है। अजागावो महिष्यश्चा निर्विसंतो वनाद्वनम इशिका टवीम निर्विवशु क्रंद्यंतो दावतर्षिता। वहां पर महाराज बहुत बड़ा दावानल चारों तरफ से उस सरकंडे के इशिका टवी यानी इशिका का जो वन, यानी जो सरकंडे थे उनका जो वन था, उसमें महाराज आग लग गई, और चारों तरफ से छोटे छोटे ग्वाल बाल और छोटे छोटे गाय बछड़े बछिया सब उसमें घिर गए, और क्रंदन करना उन्होंने प्रारंभ कर, क्रंद्यंतो दावतर्षिता, क्रंदन करना प्रारंभ कर दिया महाराज। जिस समय ऐसी स्थिति सामने आई तो भगवान ने वहां पर जो है, सुखदेव जी कहते हैं जिस समय भगवान के समक्ष इस प्रकार से वो छोटे छोटे ग्वाल बाल और गाय बैल बछड़े चिल्लाने लगे, तो भगवान ने उनसे कहा कि तुम लोग डरो मत, बचो निशम्य कृपणम बंधूनाम भगवान हरि निमीलियत माभैष्ट लोचना नित्य भाषत। कहते हैं उन्होंने कहा बच्चों तुम डरो मत, तुम अपनी आंखों को बंद करो, बचो निशम्य कृपणम, तुम जो है डरो मत, बिल्कुल तुमको घबराने की जरूरत नहीं, बंधु नाम भगवान हरि, क्योंकि वो सबके सखा और सबकी जो है सुधी लेने वाले हैं। निमीलियत मा वहिष्ठ, तुम अपनी आंखों को बंद कर लो। कहते हैं इस प्रकार से जब उन्होंने आज्ञा दी तो उन बालकों ने तथेति मीलिता छेसु, उन्होंने भगवान के कहने पर महाराज अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पीत्वा मुखेन तात कृच्छाद योगाधीशो विमोचयत, महाराज उस समय भगवान ने अपने मुख से उस अग्नि को पान कर लिया। लेकिन इस समय संपूर्ण ग्वाल बाल बछड़े बछिया अपनी आंखों को क्या किए हुए हैं, बंद किए। दो बार भगवान ने दावा नल से बचाने की चेष्टा की है। ये दावा नल जो है कुछ और नहीं है बल्कि ये वो त्रिताप है जिसमें ये संसार रात दिन जल रहा है। हम आप जिस तापों में रात दिन जल रहे हैं ये वो अग्नि है हमारा, है ना। कौन कौन सी? हाँ, एक है मानसिक, रात दिन हमारा मन संसार की चिंता में जलता रहता है, एक ये अग्नि हमारे शरीर में लगी हुई। एक है देहाग्नि जिसमें हमारी बीमारियां आती हैं, एड़ी से चोटी तक सुबह से शाम तक किसी ना किसी बीमारी को हम क्या करते रहते हैं, ठीक करते हैं। एक बीमारी को ठीक करते हैं दूसरी प्रकट हो जाती, दैहिक ताप कहलाता है, और उसके बाद भौतिक ताप। उसके बाद भी हम इतने बीमारियों से घिरे होने के बाद भी इस संसार को प्राप्त कर लेना चाहते हैं और इस संसार को पकड़ लेना चाहते हैं। सबसे बड़ा मजाक तो ये है, आपकी अपनी उम्र अपनी आयु आपसे पकड़ी नहीं जा रही है और हम संसार की वस्तु पदार्थ को पकड़ने का क्या कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान मजाक करते हैं हमसे, अरे कम से कम अपनी आयु को ही स्थिर कर लो पहले। क्यों भाई, रुक रही है, एक एक साल करके हम क्या होते जा रहे हैं, आखिरी स्टेशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ध्यान देना। लेकिन उसके बाद भी ये मनुष्य इस संसार को रोक लेना चाहता है, वहीं पे खड़ा कर देना चाहता है, ये सब मेरा हो जाए, मेरा बना रहे, मेरे से छूटे नहीं। भौतिक ताप, इसमें ये संसार जल रहा है। इन तीनों तापों से बचाने के लिए भगवान के अलावा कोई दूसरा रास्ता, परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एकमात्र परमेश्वर ही हमारे उद्धारक हैं जो हमको इन त्रितापों से बचा सकते हैं। इसीलिए हम लोग नित्य प्रति किसी भी कार्य की समाप्ति के बाद आप तीन बार क्या बोलते हो, ओम शांति शांति शांति। ये क्यों बोला जाता, ये तीन बार जो हम शांति 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 बोलते हैं इसका मुख्य उद्देश्य ही होता है कि प्रभु हमारे इन तीनों तापों को क्या करो, शांत कर दो। क्योंकि ये दावाग्नि जो चारों तरफ से घेर लेती है, जंगल की अग्नि जब चारों तरफ से घेर लेती है तो उससे निकलने का कोई रास्ता, जैसे हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इस दावाग्नि में हम लोग जल रहे हैं, निकलने का रास्ता नहीं मालूम है, दूसरे की तरफ निहार रहे हैं, ये बच गया क्या, लेकिन पता चला वो भी बचा नहीं। हमको लगता है कि सामने वाला बच गया लेकिन वो बचा नहीं है, वो भी उसी में जल रहा है हमारा, जरा देखो। तो इन तीनों तापों को भगवान दो प्रकार से अपने भक्तों अपने साधकों के जीवन से समाप्त करते हैं, एक बार आंखों के सामने और एक बार आंखों को बंद करा के। भगवान की कृपा कभी कभी हमको अनुभव होती खुली आंखों से, खुली आंखों का मतलब क्या, वहां सब बड़े भी थे, वहां कोई छोटा नहीं था, लेकिन दूसरी बार भगवान के सामने केवल बच्चे थे और छोटे छोटे गाय बैल बछड़े बछिया थे, इसलिए भगवान ने उनकी आंखों को क्या कर दिया। हाँ, भगवान की कृपा कभी कभी हमारे अनजान रूप में घटित हो जाती है और हमको पता भी नहीं चलता, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस भगवान की कृपा को हम अपनी बुद्धि का क्या मान लेते हैं, चतुरता मानते हैं कि ये मेरी बुद्धि का चातुर्य है जिसकी वजह से मैंने ये समस्या क्या कर ली, हल कर ली। क्यों भाई, ऐसा होता है कि नहीं होता। हाँ, ये वो भगवान की कृपा है जिसको हम अनुभव करते हुए भी अनुभव जानते हैं। हम ये कैसे हो गया पता नहीं है, लेकिन महाराज सबके सामने हम अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि ये सब मेरी बुद्धि का क्या है, चातुर्य है, ये मेरी अपनी बुद्धि का खेल है महाराज, जो मैंने विजय प्राप्त कर ली। तो भगवान हमारे ऊपर, भक्तों के ऊपर, साधकों के ऊपर दो प्रकार से कृपा करते हैं। एक तो तीनों तापों को से बचाने के लिए अपने भक्तों को भगवान जो है कभी कभी उनकी कृपा का साक्षात आपको अनुभव होता है कि ये भगवान के अलावा और संभव बिल्कुल भी नहीं था। अनुभव करते हैं आप अपने जीवन में, कभी कभी आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं और आप बिल्कुल साक्षात अनुभव करते हैं कि ये बिल्कुल ही भगवान की ही कृपा है, क्योंकि उनकी कृपा के बगैर ये संभव हो ही नहीं सकता था। ये तो खुली आंखों की लीला है और एक बंद आंखों की लीला हमारे जीवन में घटित होती है जब हम भगवान की कृपा को बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं, बिल्कुल नासमझ बन जाते हैं, नादान बन जाते हैं। लेकिन फिर भी भगवान इतना कृपालु और दया का सागर है कि हमारी इस दृष्टता को क्षमा कर देता है, जो सबसे बड़ी चीज है भगवान की, जो विशेषता है जिसके लिए उसको भगवान कहा जाता है, जिसके लिए उसको परमेश्वर कहा जाता है। हम उसकी कृपा को अनदेखा कर देते हैं। जरा सोचिए, जिस समय आपके बच्चे आपको अनदेखा कर देते हैं उस समय आपके हृदय में क्या होता है, तीर लगता है कि नहीं लगता? जरा उस परमेश्वर के बारे में सोचिए, हम 24 घंटे उसको अनदेखा करते हैं और अपने आप को सक्षम मानते हैं कि ये जो है करने वाला मैं हूं। जरा उसके बारे में सोचिए कि उसकी हृदय की विशालता का अनुभव कीजिए कि वो हमारी संपूर्ण दृष्टताओं को क्षमा करके फिर भी हमारे ऊपर कृपा करता है और हमको संसार से हटाकर अध्यात्म की ओर लाता है, क्योंकि अध्यात्म की ओर आना सबका कार्य नहीं है हमारा, ये तो भगवान की कृपा करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है इस संसार में, है ना? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विव्रणुते तनुम स्वाम। जिसके लिए अपने आप को प्रकट कर देता है, जिसके ऊपर कृपा कर देता है, उसको ही आप अपने आप की या परमेश्वर की प्राप्ति होती है, इसके अलावा संभव नहीं। तो इसलिए भगवान ने दो बार दावानल से साधारण सी लीलाएं, ये साधारण नहीं है, ये बहुत साधारण सी दिखने वाली असाधारण वेद की ऋचा कह लो या वेदांत के सूत्र कह लो, जिन सूत्रों को आप वेदांत में पढ़ते हैं भगवान ने उनको बिल्कुल साधारण रीति से करके दिखाया है, क्योंकि वो पराशक्ति जिसको हम परमेश्वर कहते हैं वो रात दिन हमारी रक्षा करती है, लेकिन हम कभी भी उसकी रक्षा का अनुभव नहीं करते, बल्कि देहाभिमान के कारण और अपनी बुद्धि जिसको बुद्धि शक्ति कहते हैं उसके अभिमान के कारण हम अपने स्वरूप का चिंतन ना करके हम अपने देह के इस छोटे से कुएं का ही चिंतन करते रहते हैं। ये जो गलती है, इन लीलाओं के माध्यम से हमको संभालने की, समझने की चेष्टा करनी चाहिए और उस परम विशाल कृपा के सागर, प्रभु की कृपा का अपने जीवन में अनुभव करना चाहिए। तब आप भगवान के परम सेवक कहलाएंगे, तब आप भगवान के परम भक्त कहलाएंगे और तब आपको वास्तविकता में अपने बृहद अखंड अनंत स्वरूप का क्या होगा, दर्शन होगा, जो अभी हमको नहीं हो रहा है। तो आगे का प्रसंग जो है कर लेंगे, समय की समाप्ति। सायंकाल भी रामचरितमानस का मंगलाचरण विषय जो है हम लोगों ने लिया है, उसका जो है तुलसीदास जी की विशेषता, तुलसीदास जी की गहनता और उनके आध्यात्मिक स्वरूप का हम लोग चिंतन सायंकाल को कर रहे हैं। आप लोग सादर निमंत्रित हैं 6 बजे से 7:30 बजे तक जो है दैया जी के द्वारा संचालित जो गीता चिंतन माला, उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम चल रहा है। तो सायंकाल भगवान श्री राम और प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण, दो युगों में आपको जिला रहा हूं, तीसरे में तो आप ही हैं कलयुग में, प्रातःकाल द्वापर और सायंकाल त्रेता युग तीन युगों में एक साथ जी रहे हो और इससे ज्यादा चमत्कार क्या देखना। अरे मुझे धन्यवाद तो दे दो, बोलिए सच्चिदानंद। तीन युगों का आनंद आपको एक दिन एक एक दिन में दे रहे हैं और क्या चाहिए भाई है। तो इस प्रकार से आइए एक बार भगवान का नाम लेकर समाप्ति करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वा देव। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण
वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।